आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को बना रही है आधुनिक। प्रदेश में 1 मई से 30 दिन तक कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी को किफायती बनाने के लिए शुरू हुई नई सेवा ज्ञान पोस्ट। और प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश होने की संभावना, ओलावृष्टि और आंधी चलने की भी आशंका। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बना रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सरकार, शिक्षा समुदाय, उद्योग और नवोन्मेषक समुदाय के नेताओं के पहले रणनीतिक सम्मेलन युग्म को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश के विश्वविद्यालय परिसर गतिशील केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT की क्षमता और सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2013-14 में R&D पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर केवल 60,000 करोड़ रुपए था। हमने इसे डबल से भी ज्यादा बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है। देश में कई स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च पार्क भी स्थापित किए गए। लगभग 6,000 उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स की स्थापना की गई है।
प्रदेश में 1 मई से 30 दिन तक कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। आज राज्य मंत्रिमंडल ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी। इसमें स्वैच्छिक तबादले भी शामिल हैं। विभाग खुद भी तबादला नीति बना सकेंगे, लेकिन इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 30 मई तक ई ऑफिस में सारे तबादले दर्ज होंगे।
स्थानांतरण का रेशियो में भी थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि 200 तक जो पद है उसमें 20% तक ट्रांसफर कर सकेंगे। 201 से 1,000 तक कुल उसमें 15% ट्रांसफर कर सकेंगे। 1,001 से लेकर 2,000 तक की संख्या तक में 5%, 10% ट्रांसफर कर पाएंगे। इस प्रकार लगभग 2,001 से अधिक को 5%। तो ये एक थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। ट्रांसफर नीति 1 मई से लागू हो जाएगी।
श्री विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। ये प्लांट चंबल में लगाया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त देने के मुख्यमंत्री की घोषणा को भी मंजूरी दी गई। वहीं केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना पर वैकल्पिक पेंशन स्कीम का प्रस्ताव तैयार करने के लिए 6 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। मध्य प्रदेश AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये प्रणाली उपग्रह चित्रों, मोबाइल फीडबैक और मशीन लर्निंग की मदद से कार्य करती है, जो भूमि अतिक्रमण, भूमि उपयोग परिवर्तन और वन क्षति का पता लगाकर वन विभाग को समय पर कार्रवाई के लिए सक्षम बनाती है। इस नवाचार की परिकल्पना वन मंडलाधिकारी गुना अक्षय राठौर द्वारा की गई है। वन विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रणाली को 5 वन मंडलों शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहान और खंडवा में लागू किया गया है। इस प्रणाली को राज्य स्तर पर भी लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा कल अक्षय तृतीया से शुरू होगी। यात्रा की शुरुआत उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ होगी। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई और चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। आकाशवाणी इस 4 धाम यात्रा के उद्घाटन का सीधा प्रसारण करेगा। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का सीधा प्रसारण कल सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का सीधा प्रसारण 11:30 से 12:30 बजे तक होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने देश भर के पोस्ट ऑफिस के जरिए शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी को किफायती बनाने के लिए एक नई सेवा ज्ञान पोस्ट की घोषणा की है। ज्ञान पोस्ट सेवा 1 मई से पूरे भारत के सभी डाकघरों में चालू हो जाएगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि टेक्स्ट बुक से लेकर सांस्कृतिक पुस्तक सबसे दूर दराज के गांव या कस्बे तक भी पहुंच सके, इसके लिए ज्ञान पोस्ट को तैयार किया गया है।
ज्ञान पोस्ट के द्वारा जो शिक्षा की किताबें वितरित की जाएंगी, उसकी चार बिंदु है। पहला बिंदु तो ये है कि पूर्ण राष्ट्र में अगर किसी चीज को विस्तृत रूप से वितरित करनी है, दूसरा किफायती रूप ताकि कम से कम भार हमारे नौजवानों पर शिक्षा के लिए लग पाए, तीसरा सबसे वाइडेस्ट रेंज हो शिक्षा के स्रोतों की किताबों की, चौथा कि इस योजना के तहत एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम कि आपकी किताब अप टू डेट आप ट्रैक कर सकते हैं कि।
नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आज ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना की गई। एक दिवसीय इस गणना में 500 से अधिक वनकर्मी और अधिकारी रिजर्व के 146 बीटों में तैनात किए गए। फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया कि सुबह 6 बजे से शुरू हुई गणना में गिद्धों के साथ ही उनके घोंसलों और बच्चों की भी जानकारी जुटाई गई। गणना में केवल बैठे हुए गिद्धों की गिनती की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व नृत्य दिवस पर देश प्रदेश के सभी कलाकारों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नृत्य अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है जिसमें आत्मा शरीर के साथ लयबद्ध होकर आनंद का अनुभव करती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखने वाली नृत्य कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हज यात्रा की शुरुआत प्रदेश में आज से हो रही है। अब से कुछ देर बाद राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 165 हज यात्रियों को लेकर सऊदी अरब के लिए रवाना होगी। इससे पहले भोपाल स्थित हज कमेटी के दफ्तर में नियमानुसार औपचारिकताएं पूरी की गईं। भोपाल से दूसरी फ्लाइट कल रवाना होगी जिसमें 109 यात्री सऊदी अरब के लिए उड़ान भरेंगे। इस साल मध्य प्रदेश से करीब 8,000 श्रद्धालु हज यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश होने की संभावना है। बारिश का असर नर्मदापुरम, रीवा, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग में सबसे ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग ने सिवनी, दमोह, सिंगरौली, अनूपपुर और पन्ना में ओलावृष्टि होने तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका भी जाहिर की है। वहीं रीवा, कटनी, शहडोल, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सतना, सीधी और मंडला में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है। हालांकि भोपाल और इंदौर संभाग के शहरों में पारा 42 डिग्री के आसपास ही रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लघु उद्योग भारती मध्य प्रदेश इकाई के 32वें स्थापना दिवस पर ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में आयोजित कार्यक्रम लीप लर्निंग एम्पावरमेंट असिस्टेंस प्रोग्रेस ई पोर्टल का शुभारंभ किया गया। डिंडौरी जिले में रवि विपणन वर्ष के अंतर्गत 12 उपार्जन केंद्रों पर 4,737 किसानों ने गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। छतरपुर जिले को अगली बरसात तक अथवा अन्य आदेश तक कलेक्टर ने जल अभाव क्षेत्र घोषित किया है। देवास जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए ग्राम हिरली में एसडीआरएफ और होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारियों, सरपंच, सचिव तथा ग्रामीणों ने लगातार तीसरे दिन सफाई कार्य कर श्रमदान किया। सीहोर जिले में कल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले में बाल विवाहों को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर ने वन स्टॉप सेंटर में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। खंडवा में शासकीय आईटीआई सिंघाड़ा रोड में 1 मई को जिला स्तरीय युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नीमच में कलेक्टर ने आज जनसुनवाई के दौरान 117 आवेदकों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और शिवपुरी जिले के नरवर तहसील के ठाठी गांव में बीती रात को जंगली जानवर के हमले में 30 भेड़ों की मौत हो गई जबकि 8 भेड़ें गंभीर रूप से घायल हो गईं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था को बना रही है आधुनिक। प्रदेश में 1 मई से 30 दिन तक कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी को किफायती बनाने के लिए शुरू हुई नई सेवा ज्ञान पोस्ट। और प्रदेश में अगले 4 दिन तक बारिश की संभावना, ओलावृष्टि और आंधी चलने की भी आशंका। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।